الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. آجم سورة البقرة آيت نمبر 14 سے 20 تک کریں گے. دیکھتے ہیں تفسیر سورة البقرة آیت نمبر 14 سے 20 تک. ہم ابھی تک سورة البقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جب ہدایت آ جائے تو اس کے بعد انسانیت میں تین گروہ ہو جاتے ہیں ہدایت آنے کے بعد. ٹھیک ہے، پہلا گروہ وہ جو متقین کا گروہ تھا، جو ہدایت یافتہ لوگوں کا گروہ تھا، جن کے انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ یہ ہوں گے کہ وہ کامیاب ہیں، مفلحون ہیں. پھر دوسرے ایکسٹریم پہ ایک اور گروہ ہے جو کافروں کا گروہ ہے. جب ہدایت آ جائے، سارے کافر مراد نہیں ہیں، وہ کافر جن تک ہدایت کا پیغام پہنچ چکا ہے لیکن پھر بھی وہ اتنے سٹبن ہیں، سمجھ آنے کے باوجود، ہدایت کا پیغام پانے کے باوجود وہ اپنی ضد کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یا انا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کفر پہ ہی رہنا. ان کا بھی انجام آپ نے دیکھ لیا عذاب عظیم کی صورت میں. پھر تیسرا گروہ، اب ایک ایکسٹریم وہ تھی جو مفلحون تھے، جو ہدایت پہ تھے، دوسری ایکسٹریم بالکل اپوزٹ، وہ کافر تھے، اور ایک ہیں جو بیچ بیچ میں چلنے والے ہیں، اور وہ ہیں منافقین. منافق لوگ مکہ میں موجود نہیں تھے، مدینہ میں آ کے بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تو آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ لگنے میں ہمارے لیے آگے بڑے فائدے ہوں گے، تو وہ بھی چاروں ناچار اسلام میں داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا. منافقین کا ذکر سب سے زیادہ آیات اسی کے اوپر ہیں جو آج ہم مکمل کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ ہم نے شروع کیا آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک. یہ 20 آیات، سوری 13 آیات، 20 تک آیت، 20 آیات 8 سے لے کے 20 تک، یہ تمام کی تمام منافقین کی صفات کے اوپر ہیں. منافقین کیسے ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ منافقین کو پہچاننا سب سے مشکل ہے. جو پہلا گروہ ہے اس کی پہچان بھی آسان ہے، جو دوسرا ہے وہ بھی برملا کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، لیکن ایک وہ ہیں جن کا ظاہر اور باطن فرق ہے، جو بولتے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں. یہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ ہم اس کے بعد لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کرنا شروع کر دیں، فلاں منافق فلاں منافق، اور دیکھو ہمارے گھر میں بھی فلاں لوگ ہیں نا، وہ بھی ہمارے خاندان میں منافق ہی ہیں، ان کے اوپر یہ سارا بالکل ثابت ہوتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو چیک کر لیں کہ یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے، انسان بیماری کو کیسے پہچانے؟ اس کے سمٹم سے. جب سمٹم سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ بیماری کہیں مجھے تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس وقت کس سٹیج پہ ہے؟ سیکنڈ سٹیج ہے، تھرڈ سٹیج ہے، بالکل ہی فورتھ سٹیج پہ پہنچ گئی اللہ نہ کرے، یا کیا کس سٹیج پہ ہوں میں؟ پھر ہی انسان ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. फिर ही वो अपना इलाज करा सकता है, लेकिन अगर आइडेंटिफाई नहीं होगा तो फिर इलाज मुमकिन नहीं है। तो एक तो इसका मकसद ये है कि इंसान अपने आप में तलाश करे। और मुनाफिकीन, ऐसा नहीं कि ये निफाक, जैसे आपने पढ़ लिया इसके अंदर कि ये एक बीमारी है, ऐसा नहीं कि ये उस जमाने में ही सिर्फ होगी, रहती दुनिया तक ऐसे लोग आते रहेंगे जो शायद पैदा तो हो जाएं मुसलमान घराने में, लेकिन उसके बाद इस्लाम से उनको चिढ़ हो, इस्लाम के बारे में उनके दिलों में शकुक व शुभात हो, पता नहीं क्या ठीक भी है कि नहीं ठीक, पता नहीं कैसा है, अल्लाह जाने इसके साथ लगने में कोई फायदा भी है कि नहीं, इसके साथ लगने से तो हम पीछे ही रह जाएंगे दुनिया में। उनके लिए इस्लाम, अल्लाह माफ करे, एक गले का फंदा है कि जो उनके गले में पड़ चुका है, इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान घराने में पैदा हो गए थे। तो रहती दुनिया तक ऐसे लोग आते रहेंगे। अब उनको पहचानना इसलिए इतना मुश्किल है कि उनके जाहिर से नजर नहीं आएगा, बातिन खराब है, और उस बातिन की खराबी की वजह से, अंदर बीमारी की वजह से सिम्टम्स कुछ जाहिर हो रहे हैं। आप देखें ना, जैसे अल्लाह ताला माफ कर दे, सबको महफूज रखे, किसी के अंदर कोई ऐसा मसलन कैंसर है तो उसको बुखार हो गया, या उसको ऐसे कोई और सिम्टम जाहिर होने शुरू हो गए, वो सिम्टम से फिर पता चलता है कि अच्छा अंदर कोई बीमारी है। अंदर बीमारी तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन सिम्टम से वो सिम्टम सिर्फ बता रहे हैं। इसी तरह निफाक की बीमारी अंदर है, वो कैंसर अंदर है, लेकिन सिम्टम्स में है, झूठ बोल रहे हैं, कभी जाके कहते हैं हमने तो ऐसे नहीं होना जैसे ये बेवकूफ लोग हैं, कभी कुछ करते हैं, इस तरह की चीजें धोखा देने की कोशिश करते हैं मुसलमानों को, बात बात पे झूठ बोलते हैं, फसाद करते हैं जमीन में। अब आप लोगों को इन आयात को पढ़ के, जो अभी तक हमने पढ़ी है, इन आयात को पढ़ के कुछ डर लगा, कुछ परेशानी हुई, या आप मुतमईन हैं कि हम तो इनमें थोड़ी हैं, ये तो मदीना में होते थे, हम थोड़ी हैं ये लोग? क्या आपका इस हफ्ते में रद्दे अमल रहा इन आयात को पढ़ने के बाद? क्या आपने अपने आप में गौर किया? या आपने सोचा कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है? ये इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि ये ना हो कि अल्लाह ना करे हम अपनी जिंदगी में कहते रहे हम तो ईमान वाले हैं। आप आयत नंबर 8 को देख लें, मैं यकूलू आमन्ना बिल्ला व बिल योमिल आखिर, हम तो ईमान वाले हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम कयामत पर ईमान रखते हैं, हम रसूल पे ईमान रखते हैं, हम फरिश्तों पे, इस पे हमारे सब पे ईमान है, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ भी ये कहने से ईमान वाले हो जाते हैं? वमा हम भी मोमिनीन, फरमाया नहीं वो ईमान वाले नहीं। आपने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को मुसलमान कहलाती रहूं, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ मैं मुसलमान ना हूं, मैं मोमिन ना हूं, मैं ईमान वाली खुद को समझती रहूं, सारी जिंदगी खुद को धोखे में डाले रखा क्योंकि मैं जुबान से जो बोल रही हूं, लेकिन ईमान मेरे अंदर दाखिल ही ना हुआ। कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि ये मुनाफिक मस्जिदों में जाते थे, नमाज पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, कलमा भी पढ़ने वाले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में भी बैठते थे, इससे बड़ी क्या बात हो सकती? फिर भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया वमा हुम बिमुमिनीन, तो ये कितनी परेशानी की बात है। इसका इससे पता चलता है कि दावा ईमान करने से इंसान मोमिन नहीं हो जाता, ये लिख लें, दावा ईमान करने से इंसान मोमिन नहीं हो जाता। हम कहीं खुद को धोखे में तो नहीं डाले, जैसे कि यहां पे कहा गया वो किसी और को नहीं धोखा दे रहे, वो तो अपने आप को ही धोखा दे रहे, लेकिन उनको शऊर ही नहीं, रियलाइजेशन ही नहीं इस चीज की, खुद ही को धोखा देते जा रहे हैं। ये तो धोखा ही देना है ना कि मुंह से बोल बोल के कहते नहीं, और खुद ही नहीं पता कि हम तो ईमान में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हम मोमिन है ही नहीं। तो एक तो इस वजह से, ताकि हम अपने अंदर इन चीजों को देखें और एक एक करके निकालें, और दूसरे इसलिए भी बहुत ज्यादा इस चीज का यहां पे जिक्र किया गया है कि ऐसे सिम्टम्स हम किसी में देख लें तो फिर हम थोड़ा बच के रहें। ये नहीं कि हम उनके साथ यानी इतनी बेस्ट फ्रेंड बन जाएं और उनके असर को कबूल कर लें, फिर केयरफुल रहें। ओके, ये वो बीमारी है जो कंटेजियस है। आपको पता चल जाता है किसी को फ्लू हुआ है, आप उसके पास नहीं बैठते, आप कहते मुझे भी ना लग जाए। आप इतनी एहतियात करते हैं, मास्क पहन के घूमते, तो केयरफुल रहें। फिर ये बीमारी लग जाती है क्योंकि ये अपनी प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं। जैसे इन्होंने कहा, क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान ले आए? तो कोई सुन लेगा जिसका ईमान खुद का कमजोर है, तो उसको तो ये बीमारी चिमट जाएगी, कहेगी हम भी कहीं बेवकूफ ना हो जाएं। हाँ वाकई ये लोग वाकई तो ये तो बेवकूफ ही है, उसके भी जहन में आ गया। तो ये दो मकासिद आपने समझ लिए ना, एक तो अपने अंदर देखना, दूसरे ऐसे किसी के अंदर सिम्टम्स देख लिए, तो ये नहीं कि हम उसको कह दें ये मुनाफिक है, बल्कि ये करें कि हम इन क्वालिटीज के रखने वालों से केयरफुल हो जाएं, कि कहीं ये ना वो अपने जरासीम हम तक फैला दें। तीसरी हमारे करने का काम ये है कि हम हर वक्त दुआ करते रहें, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन निफाक, ये अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे, निफाक मेरे अंदर ना आए, हैला मुनाफिकों वाली हर हर अलामत मेरे अंदर से खत्म कर दे, हर हर सिफत मेरे अंदर से खत्म कर दे। कितनी ये बुरी बीमारी है और कितना ज्यादा इससे हमारे असलाफ डरा करते थे कि हमारे अंदर निफाक ना आ जाए, कि हजरत उमर पूछते हैं हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि कहीं मेरा नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में तो नहीं, क्योंकि उनके पास थी मुनाफिकीन की लिस्ट, उनको पता था कि कौन मुनाफिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो राजदान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया हुआ था, तो उनसे पूछा करते थे कहीं मैं तो मुनाफिकों में नहीं। अगर उनको इतना डर था तो फिर हमें बहुत ज्यादा डरना चाहिए, इस चीज के ऊपर रोना आना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो मैं मुंह से अपने आप को ईमान वाली कहती रहूं, कुरान पढ़ने वाली हूँ, नमाजें पढ़ने वाली हूँ, और मेरा ईमान अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ना। ईमान वो ही है जो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, बाकी सिर्फ मुंह की बातें। तो आज भी हम इसको मुकम्मल करेंगे, कुछ मिसालों के साथ भी देखेंगे कि मुनाफिक में क्या मिसालें दी गई है मुनाफ़कत की, और उन मिसालों से और ज्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे यहाँ पास बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाए कि मुनाफिक कैसा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वह ईदा, और जब लकुल्लदीना आमन, मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, यानी ये मुनाफिकीन। अच्छा आप देख लें, आप यहाँ पे कहीं पे भी लफ्ज मुनाफिक नहीं आया, गो कि एक सूरत है कुराने करीम में सूरतुल मुनाफिकून, लेकिन यहां पर नहीं आया। तो जब वो मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, कौन? वो जो पक्के ईमान वाले हैं ना, उनसे जब जाके मिलते हैं, कालू आमन्ना, वो कहते हैं हम ईमान लाए। क्यों कहते हैं ऐसे, क्या वजह है, उनको ये कहने की जरूरत क्यों पेश आती है? देखें, जब इंसान के ना अंदर चोर होता है तो उसको बार बार कहना पड़ता है। ऐसे कोई इंसान हर वक्त कहते रहे मैं तो बिल्कुल सच्चा हूँ, मैं तो बिल्कुल सच्ची हूँ, कसम से मैं तो बिल्कुल सच्ची हूँ, इसका मतलब है कि कहीं दाल में कुछ काला है। मैंने तो तुम्हारी गिबत नहीं की, मैंने तो तुम्हारी बुराई नहीं की, इसका मतलब आके कुछ किया होगा तो इसीलिए कह रहे हैं। तो इनको बार बार डिक्लेयर करना पड़ता था, इसलिए कि जब आके मुलाकात करते थे, जब इनकी मजलिसों में आते थे, मुसलमानों की, मोमिनों की कह दें, मोमिनों की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठते थे, तो इनको बार बार डिक्लेयर करना पड़ता था कि हम भी ईमान वाले हैं, ताकि ये ना हो कि कहीं हमारे अंदर की जो खबासत है वो किसी के सामने जाहिर हो जाए, कहीं पता ना चल जाए। दूसरी क्या बात है, फिट इन होने के लिए ना, ये इनको हर वक्त फिट होने की हर जगह पर ये तलाश रहती थी कि हम फिट हो जाएं,
कहीं ये ना हो कि कोई हमें ऐसा समझ ले कि हमारी मुनाफ़त जाहिर हो जाए, कोई ये ना समझ ले कि ये तो मुनाफिक है। तो इसलिए फिट इन होने के लिए हर जगह इनको बार बार ये कहना पड़ता था हम भी ईमान वाले हैं, यानी कोई हमें समझ ना ले कि हम मुनाफिक हैं, हमने कुछ किया है। वह इदा, और जब खलाऊ खलबत में होते, अकेले होते हैं, इला तरफ शयातीनिहिम अपने शैतानों के, शैतानों से मुराद कौन है, जो इनके सरदार थे, जो इनके हम ख्याल थे, जो इनके यानी अंदर इंसानों में से, यानी कि जिन्नों में से नहीं बात हो रही, इंसानों में से जो कुफर पे थे, अपने शैतानों के पास। अच्छा, शैतान का लफ्ज है ना, ये फालान के वजन पे है, यानी एक एक समझ लें, एक सांचा, एक मोल्ड होता है ना, आप केक बनाते हैं, आप स्क्वायर में बना ले स्क्वायर बन जाता है केक, आप गोल सांचे में बना ले गोल बन जाता है। इस तरह अरबिक में कुछ सांचे हैं, जैसे फालान, जैसे फाइल, जैसे और भी सांचे हैं। अब उस वजन पे, जैसे समझ लें कि उसके राइमिंग वर्ड आ जाए, शैतान या अतशान, या इससे पहले हमने कौन सा लफ्ज पढ़ा, रहमान, तो उसके अंदर फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा का माना होता है, मुबालगा होता है। शैतान वो है जो सरकशी में बहुत ज्यादा, तुगयानी में बहुत ज्यादा, तकबर में बहुत ज्यादा। और शैतान इंसानों में से भी होते हैं, जिन्नों में से भी, इसीलिए तो अल्लदी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में से भी और इंसानों में से, सूरह नास में है ना। तो शयातीन इंस भी होते हैं, ये उनके पास जब अकेले में होते, यानी आप कोई मोमिन इर्द गिर्द नहीं है, ये अकेले हैं उनके सामने। जब इंसान अकेला होता है ना, तो खलबतें उसकी उसकी असलियत को खोल देती हैं, उसकी हकीकत क्या है वो उसकी तन्हाई में पता चलती है। यानी इंसान तन्हाई में कैसा होता है, उसकी सोच, उसका अमल, वो ही असल में वो होता है। तो ये जब तन्हा होते थे, इसीलिए कहा जाता है, हमारे असलाफ कहते हैं अपनी तन्हाइयों को जरूर चेक किया करें, तन्हाइयों में आप कैसे हैं, अकेले में आप क्या करते हैं, जब अपने घर वालों के साथ अकेले होते हैं, या अपने बहुत करीबी दोस्तों के साथ जिनमें आपको ये नहीं है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, उनमें अकेले होते हैं, या आप बिल्कुल अकेले होते हैं, तब आप कैसे होते हैं। तो जब वो अकेले होते हैं, अपने शयातीन की तरफ इला जब आ जाएगा ना, तो तब आता है हलाव के बाद, जब अपने से किसी को आप बड़ा समझते हैं तो उसकी तरफ जाते हैं, उसकी तरफ जाना, तो आप किसी को ऊंचा अपने से समझते हैं, तो ये उनको, उन शैतानों को अपने से बढ़ के ऊंचा, बहुत इनकी नजर में वो बहुत बड़ी चीजें थी, उनके लीडर, उनके बड़े, उनकी तरफ जाते। तो अब क्या बात कहते, कालू वो कहते, इन्ना माकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, अब नहीं कहते हम ईमान लेकर आए हैं, हम कहते हम तुम्हारे साथ हैं। उनको ये अश्योरेंस देते थे कि तुम ये ना समझना कि हम उनके पास जाते हैं तो हम उनकी तरह के हो गए या हम उनमें से हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा, बेशक इसके सिवा कोई बात ही नहीं है, नहनु मुस्तहजीउन, हम तो मजाक करने वाले हैं, किसके साथ, उनके साथ, उन मोमिनों के साथ, यानी फिक्र ना करो, हम तो उनको उल्लू बना रहे हैं, जिसको कहते हैं ना, हम तो चूना लगा रहे हैं, हम उनके साथ थोड़ी हैं, असल तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो वैसे ही उनके साथ जरा ना दिल लगी कर रहे हैं, दिल बहलाने के लिए थोड़ी देर के लिए उनके साथ मजाक वजाक कर लेते, असल में तो हम उनके साथ थोड़ी हैं। यानी इधर एक जुबान, उधर कोई और जुबान, इधर एक रवैया, उधर कोई और रवैया, जैसी मजलिस देखी वैसा रंग ढंग बदल लिया, वैसे बन गए। ये मुनाफिकीन की एक सिफत है, याद रखें, मुनाफिक कैसा होता है कि वो दो रुखा होता है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन बदतरीन इंसान वो होगा जो डबल फेस होगा। इसी को आप डबल फेस कहते हैं। अब खुद सोचें, कोई ऐसा ऐसी बंदी आपको मिल जाए जो आपकी सास के पास जाए तो उसकी भलाइयाँ और उनकी अच्छाइयाँ बयान करना शुरू कर दे, और आपकी बुराइयाँ, और आपके पास आए तो आपकी सास की बुराइयाँ और आपकी तारीफें शुरू कर दे। कैसे ऐसे बंदे को आप कैसा समझेंगे? जिसके पास बैठ जाए उसकी वाह और दूसरे की बुराई। हम तो उनके साथ मजाक कर रहे हैं, वो तो आपको पता है उनको उल्लू बनाने में बड़ा मजा आता है। वो तो ऐसे बेवकूफ से लोग हैं, तो हम तो जरा मजे के लिए, जरा फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए तो उनके पास बैठते हैं, जरा हम हंसी मजाक कर लें उनके साथ। और इस्तेजा मैंने आपको क्या बताया, कौन सा मजाक होता है? किसी को हकीर करना के लिए जो होता है, तो वो मजाक हम उनसे करते हैं। अब ये जो डबल फेस लोग होते हैं, ये अल्लाह ताला के यहाँ कयामत के दिन बदतरीन होंगे। आपको आज शायद वो मजलिसे ना मिलती हूँ, गो के आज भी ऐसे लोग हैं, वो क्रिश्चियंस में जाएंगे तो वो फिर वैसे ही बन जाते। हम और तुम एक ही है ना, यहूदी के साथ बैठे वैसे, हिंदू के साथ बैठे वैसे, अरे सब एक ही खुदा को मानते हैं। अब उसको इस्लाम कह लो, उसको ये कह लो, कुछ ऐसा फर्क नहीं, ऐसे ही लोगों ने बनाई नहीं है बातें। खुदा तो एक ही है ना, सबका एक ही है वो, आपका भी हमारा भी सब एक ही है हम। वो फिर एक ग्लोबल रिलीजन लेके तो उसके मुताबिक बातें करना शुरू कर देते हैं, और जब मुसलमानों में आते हैं तो फिर कहते हैं कि हाँ देखो वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे। ये मुनाफिकाना किरदार है, जो जहां बैठे उसकी हाँ में हाँ मिलाए, उसकी तारीफें, उसको बड़ा करे। इला शयातीन है ना, उनको बड़ा समझते हैं ना, उसको ही बड़ा बनाए, और जब आ, 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 किसी और के पास जाए तो उसके साथ कह दे कि हाँ जी हम तो आपके साथ हैं, हम तो मानते ही नहीं उनको, वो तो ऐसे ऐसे हैं। इस तरह जिस मसलक वालों के साथ बैठ जाए तो उनकी ही तारीफें शुरू करते। इसी तरह आम जिंदगी में भी देखे, खानदानों में, मैंने आपको एक मिसाल दे दी, खानदानों में तो ऐसी खवातीन होती हैं जिधर जाती हैं उधर वैसे ही बन जाती हैं। आपके ससुराल में आए गए तो आपकी बुराइयां, आपके पास आए तो उनकी बुराइयां, जी गिरगिट की तरह रंग बदलना। इसी तरह मस्जिद गए तो हिजाब ले लिया, पार्टी में गए तो कैप्रीज पहन ली। अब वो खुदा जो मस्जिद में है, क्या वो मस्जिद से बाहर नहीं है? दर्स में आए तो पारसाई का लिबादा, नेकी का लिबादा, शादी में गए तो कुछ और ही बन के बैठ गए। यानी हर जगह वो अपना जैसा देश वैसा भेस, जिस जगह जाते हैं उस जगह के में वैसे ही बन जाते हैं, उनको उनका अपना कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग दुनियावी तौर पे भी, लोगों की नजरों में भी अपना मकाम खो देते हैं। ऐसे लोग कहीं पे भी इज्जत नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए इसीलिए आगे आ गया कि अल्लाहु यस्तहजीउ बिहिम, अल्लाह ताला उनसे मजाक करता है। अब ये देखें, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इनकी इज्जत कहीं नहीं रहती। वो लेट डाउन करने के लिए, जलील करने के लिए कह रहे हैं कि हम उनके साथ वो वाला मजाक करते हैं, हम उनका रिकॉर्ड लगाते हैं। ठीक है, अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला उनका इस्तेहजा करता है। हम अपने आप को खुद चेक करें, क्लास में हम हैं तो कैसे हैं, क्लास से उठते हैं तो कैसे हैं, मस्जिद में जाते हैं तो कैसे हैं, मस्जिद से बाहर पार्टियों में होते हैं तो हम कैसे हैं, हम दर्स में होते हैं तो कैसे हैं, हम दर्स की मजलिस से उठते हैं बाहर निकलते हैं तो कैसे हैं, हम अपने हम ख्याल लोगों में कैसे हैं और दूसरों में जाते हैं तो कैसे हैं। मोमिन जो होता है ना, वो तो खलवत और जलवत दोनों में सेम होता है, उसको इससे परवाह नहीं है कि कौन मेरे इर्द गिर्द बैठा है, वो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, वो वन फेस्ड होता है, हर जगह वो उसी फेस से जाता है। अगर हम ऐसे हैं कि जहां पे आज बैठे हैं
वहां पे कुछ और है, लेकिन जहां पे किसी और जगह जाते हैं, मतलब किसी शादी वगैरह में है, किसी पार्टी में है, किसी फंक्शन में है, अब वहां पे कोई पहचान ही नहीं पाता कि ये बंदी वही है, तो फिर कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ जरूर है। फिर कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जो मुनाफिकाना है, तो डिटेक्ट करें इस बीमारी को। हर एक को खुश रखना, ये जो आदत है ना, हम इसको समझते हैं ना, ये तो मुसालेहत है, जैसे वो कहते हैं ना कि हम तो मुसले हैं, हम तो सुलह सफाई पसंद हैं, बड़ी सुलह करने वाले हैं, हर तरफ हमने तो हमारी तो सबके साथ बनती है, सबको हम खुश रखते हैं, हम ऐसे पागल थोड़ी हैं अपनी कश्तियां जला के एक बास्केट में ही सारे एग्स डाल दें। ये मुनाफिक कहता है, अपनी तरफ से पीस मेकर्स बनते हैं, किसी साथ बिगाड़ना थोड़ी है हमने, तो जिधर गए वैसा ही चेहरा बना लिया, जिधर गए वैसे ही बन गए। ये सीरियस बीमारी है, होशियार रहें, इसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, फौरी इलाज करें। हर एक की फेस पे अच्छा बन जाना वाला, कहीं भी मैंने बुरा नहीं बनना, हर एक के फेस पे अच्छा, चलो ठीक है आप अच्छे हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं, लेकिन जब आपका फेस पलटता है फिर बदल जाता है, फिर ये बुरा है और वो अच्छे हो गए, जिसकी तरफ आपका चेहरा है वैसा ही आप बना लेते हैं, तो आपका अपना चेहरा फिर क्या है। अल्लाह हू अकबर। तो ये तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते थे। खुद सोचें, जो लोग भी ऐसा किरदार रखें, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, बस उधर को ही चलो जिधर को दूसरे जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना क्राउड मेंटेलिटी, जिधर को लोग जो कर रहे हैं ना, जो आजकल मेजॉरिटी कर रही है, बस वैसे बन जाओ, जब माइनॉरिटी के पास आओ तो फिर उनके जैसे बन जाओ, थोड़ी देर के लिए वो बन गए, लबादा ओढ़ लिया, थोड़ी देर के लिए रमजान आया स्काफ कस लिए, अबाए पहन लिए, मस्जिदों के रुख कर लिए, उसके बाद कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए इनकी मजलिस में बैठ गए, इधर के जैसे हो गए, बाकी टाइम हम वैसे ही हैं, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। देखिए ये मुतरद्दिद लोग हैं ना, यानी इनके अंदर शक है, पता नहीं है कि इन्होंने तो इनका तो कुछ बनेगा भी या नहीं बनेगा, हम खामखा इनके साथ लग के अपना भी फ्यूचर खराब कर लें, क्या जरूरत है हमें। एक लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं, एक टेस्ट करके देखें, एक टेस्ट ये आज सोचें कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता सारी दुनिया जो है वो इस्लाम से फिर गई, कोई भी नहीं मुसलमान रहा, फिर सोचें क्या मैं रहूंगी, क्या फिर भी मैं इस दीन को मजबूती से थामे रखूंगी, अगर ला रईबा फी के ऊपर मैं ईमान रखती हूं, मैं कहती हूं कि कोई शक ही नहीं है इसके अंदर, मुनाफिक तो हमेशा शक में रहता है ना, कभी इधर कभी इधर, मुजब्जबीना बैन दालिक ला इलाहा उला वला इलाहा उला, ना इधर का ना उधर का, तसब्जुब में, शक में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस तरह रहता है। जो यकीन वाला है, जिसका ईमान मजबूत है, सारी दुनिया फिर जाए खुदा ना खास्ता इस्लाम से, वो तो फिर भी नहीं फिरेगा, उसको यकीन है। लेकिन जो वो है कि जिसने लोगों को देख के चलना है, वो फिर आज कुछ है तो कल कुछ है तो फिर परसों सब फिर जाएंगे, तो वो अल्लाह ना करे हम भी फिर जाएंगे, हम भी फिर क्यों रहे इसके ऊपर, आखिर सब इस तरफ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, इसका मतलब है कि फिर ईमान नहीं है अंदर, फिर निफाक है अभी। तो अल्लाह यस्तहजी, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है, अल्लाह सुबहाना व तआला की ये शान नहीं है कि वो किसी का इस्तेहजा करे। लेकिन यहां पर क्यों आया फिर कि अल्लाह ताला उनका मजाक उड़ाता है? याद रखिए, अरबिक के अंदर एक तरीकाकार ये कहने का होता था कि जैसा कोई फेल होता था उसका बदला देने में वो ही फेल इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, वह मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने मकर किया, उन्होंने फरेबकारी की, अल्लाह ने फरेबकारी की। तो अल्लाह ताला तो फरेबकारियां नहीं करता, लेकिन अरबिक का ये तरीका कार था, बदला देने के लिए ये लफ्ज आता था कि यानी उनको भी उन्हीं कॉइन्स में बदला दिया, उसी तरह का बदला उनको दिया गया। तो अल्लाह ताला भी यानी उनका इस्तेजा करता है, मतलब क्या है कि अल्लाह ताला उनको बदला देगा। इसका कब बदला देगा? एक तो आखरत में है ही बदला, और वो कैसे होगा कि ये लोग ऐसे होंगे कि इनके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, ये भागेंगे कि हम जन्नत में चले जाएं, जब ये करीब पहुंचेंगे दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर दूसरी तरफ का खोला जाएगा, ये उधर को भागेंगे, उधर जब भागेंगे तो वो भी बंद हो जाएगा, फिर एक तीसरा खुला हुआ देखेंगे, वो उधर को भागेंगे। आज इनके साथ भी मजाक किया जा रहा है, ये दुनिया में मजाक करते थे ना, ये लो तुम्हारे साथ भी आज मजाक है, और ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे, थक जाएंगे, और जहन्नुम में भी कहाँ इनका ठिकाना है, फितर किल असफली मिनन्नार, आग में भी सबसे नीचे, और दुनिया में इनके साथ क्या मजाक है कि अल्लाह ताला व यमुद्दुहुम फी तुगयानिहिम यअमहून, कि अल्लाह ताला इनकी रस्सी दराज कर देता। आपको लगता होगा कि अच्छा ये ऐसा करते हैं, इनको तो फौरन पकड़ लेना चाहिए, उल्टे लटका देना चाहिए। ऐसे लोग तारीख में देखें, इस्लामी तारीख में भी सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो मुनाफिकीन ने मोमिनों को पहुंचाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी देख लें मुनाफिकीन ने क्या क्या किया, कभी वो मस्जिद तर्रार बना रहे हैं, कभी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे तुहमत लगी, कभी जाके यहूद के साथ मिलके उनके साथ साजिशें कर रहे हैं, कभी काफरों को उकसा रहे हैं, यानी हर वक्त मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने वाले। एक दुश्मन होता है ना आपके सामने होता है, उसको आप भी दुश्मन समझते हैं, वो भी आपको दुश्मन समझता है, और उसके साथ पता है आपको कि इसके साथ दुश्मनी, आप एहतियात करते हैं। एक वो होता है जिसको हम आम जुबान में अपने मुहावरे में कहते हैं आस्तीन का सांप, पीठ में छुरा घोंपने वाला, मुनाफिक वो है, क्योंकि आप उसको देख के पहचान नहीं पाते, आपको पता नहीं चलता। और वाकई ऐसे इंसान दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने मुसलमानों को अपनी सफों में थे वो, उन्होंने जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया बाहर वाले उस तरह से नहीं पहुंचा सके, खुद बाहर दुश्मन के लिए खुद दरवाजे खोले कि दुश्मन अंदर आ जाए। ऐसे लोगों के लिए फिर दुनिया में भी रुसवाई है, दुनिया में एक तो उनकी अल्लाह ताला कैसे उनका मजाक करता है, दुनिया में भी उनकी रुसवाई, क्योंकि ना फिर मोमिन उनको अपने जैसा समझते हैं और काफिर भी उनके ऊपर यकीन नहीं करते। एक तारीख का वाकया है, अभी मुझे याद नहीं है कि गालिबन तातारियों के दौर के अंदर हुआ था, कि एक मुसलमान वजीर था और जो मुनाफिक था जिसको हम गद्दार भी कहते हैं, उसने सोचा कि इनके से बचने के लिए और ओहदे बड़े पाने के लिए वो पहले पहले ही जाके उनके साथ मिल गया और उनको कहा कि तुम हमला करो मैं तुम्हारे साथ हूं, और उसने ऐसी साजिशें उनके साथ की कि उनको वेलकम किया अपने शहर के अंदर, अपने इलाके में, ताकि मुझे सबसे बड़ा बना दिया जाए। लेकिन जब दुश्मन दाखिल हो गया और उन्होंने फतह कर लिया तो उन्होंने कहा सबसे पहले इसको उल्टा लटकाओ, जो अपनों का नहीं बना वो हमारा क्या बनेगा। तो इनको कहीं पे भी फिर जगह नहीं मिलती, दुनिया में भी इनके लिए रुसवाई है, और अल्लाह ताला इनकी सरकशी में इनको ढील दिए जाता है, यानी इनको मोहलत मोहलत, ऐसा नहीं कि उसी वक्त पकड़ लेता, क्यों मोहलत देता है? क्यों इनकी रस्सी दराज करता है, पकड़ना नहीं चाहिए इनको जल्दी, इसलिए करता है कि तुम करते जाओ करते जाओ, अपने गुनाहों में बढ़ते जाओ, ताकि दरकुल असफली में नार के तुम हकदार हो जाओ, सबसे निचले दर्जे के आके। इसकी मिसाल आप ऐसे समझे कि एक मसलन कुत्ता है, उसको छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ है, वो खूंटे के साथ बंधा हुआ है, वहीं वहीं चलता रहेगा, बस उसको पता है मेरी रस्सी इतनी, वो जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता कहीं। लेकिन एक कुत्ता है, उसकी रस्सी दराज कर दी गई, वो बड़ा सरकश है, उसकी 100 मीटर की रस्सी कर दी गई। अब वो अपने आप को आजाद समझता है, वो सर पर दौड़ता है दौड़ता है, वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल आजाद हूं, मुझे किसी ने क्या पकड़ना, देखो मैं जहां मर्जी भागता फिर और कितनी स्पीड से भागू, किसी को कुदरत नहीं कि मुझे पकड़ सके। जब वो 99.9 मीटर पे पहुंचेगा, वो समझ रहा है कि मैं आजाद, वो पूरी कुव्वत से भाग रहा है, लेकिन वो 100 मीटर की रस्सी के करीब पहुंचता है, और जूं ही 100 मीटर पूरे होते हैं, आप बताएं क्या उसका हाल होगा, कैसे वो चोक करेगा, कैसे कितनी जोर से पंदा उसके गले के अंदर चला जाएगा। तो जो बड़ी तेज दौड़ रहा होता है, सरकशी में आगे बढ़ता है, गुनाहों में क्रॉस कर देता है लिमिट्स को, वो समझ ये रहा होता है कि आप मुझे किसी ने नहीं पकड़ना, झूठ में धोखे में जाहिर कुछ बातें कुछ, लोगों को आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर अल्लाह ताला जब पकड़ता है ना, तो फिर उसकी पकड़ बहुत शदीद होती है, इन बतश रब्बिका ला शदीद, अल्लाह ताला की पकड़ बहुत शदीद है। उसको ये नहीं परवाह है कि ये जैसे दुनिया में होता है ना कि कोई मुजरिम है तो ओहो ये भाग ना जाए कहीं, अल्लाह ताला फरमाता है भागो भागो, तुम्हारी रस्सी दराज है भागो, क्योंकि अल्लाह ताला को पकड़ने में कोई देर नहीं लगनी। दुनिया में तो मुजरिम भाग जाएगा कहीं छुप जाएगा, इसलिए जल्दी करते हैं पकड़ने, अल्लाह ताला ढील दे देता है, जाओ और करो और करो, हत्ता के वो इसके अंदर ना डर होके इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है, तो वो उतनी ही ज्यादा जोर की होती है। उस कुत्ते को समझ लें जिसकी रस्सी दराज की गई। या महमून, मैंने आपको बताया कि वो अपनी तुगयान में अपनी सरकशी में अंधे हुए हैं, उनके दिल अंधे हो चुके हैं। दिल का अंधा होना आंखों के अंधे होने से भी ज्यादा बुरा और खतरनाक है, कि जब दिल अंधा हो जाता है ना, तो वो भी परेशान भी नहीं होता किसी गुनाह के ऊपर, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो जो मर्जी आए करता रहे, फिर कोई यानी उसको अफसोस नहीं है या इसलाह के लिए कोई फिक्र नहीं है, फिर वो बढ़ता ही जाता है। फरमाया उलाइकल्लदीना, यही वो लोग हैं ये जिनको मेंशन किया गया, यही वो लोग हैं, इश्तहरावुद्दलालता बिलहुदा, जिन्होंने खरीद ली गुमराही बदले हिदायत के। क्या मतलब, यानी आप देखें, आप कोई चीज खरीदते हैं किसी चीज के बदले, यानी आपने मसलन एक किताब खरीदी तो पैसे दिए और पैसों के बदले में आपको किताब मिली, इन्होंने हिदायत दे दी और गुमराही ले ली, कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इनके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम दिया, हिदायत इनके पास पहुंच गई थी, लेकिन इन्होंने उस हिदायत को छोड़ दिया और इसके बदले में गुमराही ले ली। दोनों चीजें सामने, आप देखिए ना, हर वक्त हमारे सामने नेकी का भी ऑप्शन होता है, बुराई का भी होता है, हिदायत का भी रास्ता खुला हुआ है, गुमराही का भी है। हिदायत आ गई, ये कुरान आ गया, रसूल आ गया, लेकिन जिसने फिर भी हिदायत को छोड़ के इसको छोड़ा और उल्टा जाके गुमराही खरीद ली, किस कदर बुरा सौदा किया उसने। तो हमारे सामने कई ऐसे ऑप्शंस होते हैं, हम एक चीज को छोड़ते हैं और दूसरी को लेते हैं, अपने दिन भर में देखें, आप क्या हिदायत के सामान को लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं या गुमराही के? मसलन आपके पास ऑप्शन है, चाहे कुरान की क्लास में आ जाएं, आप चाहे सोशल मीडिया पे बैठ के वहीं पे उसी स्क्रीन के आगे आप बैठ जाएं, सोशल मीडिया पे बैठे हैं आप कहीं ब्राउज कर रहे हैं इधर उधर, इंटरनेट पे कहीं इधर जा रहे हैं, उस वेबसाइट पे वे देख रहे हैं वो देख रहे हैं, एक तरफ गुमराही है। लेटेस्ट क्या चल रहा है आजकल, आजकल क्या फैशन है, फलां कहाँ गया, उसने क्या किया, उसने अपनी वेकेशन कहाँ की, इसको देख लूं उसको देख लूं, आपने क्या प्रेफर किया? एक तरफ वो है कि आपके सामने कोई आपका ड्रामा है या कुछ है, दूसरी तरफ नमाज का टाइम है, आप क्या लेते हैं? ये नहीं कोई कह रहा कि आप मुनाफिक हैं या मैं मुनाफिक हूं या वो मुनाफिक है या वो, ये नहीं कहा जा रहा, ये देखें कि ये सिम्टम्स कहीं मेरे अंदर तो नहीं है। हमेशा दूसरों को ही ना सोचे, अपने अंदर देखें। फरमाया फामा रबी है तिजारत हूँ, एक तिजारत हो रही है ना, हर दिन इंसान तिजारत कर रहा है, ये जो वक्त है ना इसकी भी हम तिजारत कर रहे हैं, ट्रेड करते हैं इसको, हम इस वक्त को देते हैं तो कुछ चीज लेते हैं ना, ऑल द टाइम हम इस वक्त को दे रहे हैं कुछ ले रहे हैं। अब आप देखें कि हमारी तिजारत हम फायदामंद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो फायदामंद नहीं की, तो नहीं फायदा दिया तिजारत उनकी ने उनको, उनकी तिजारत ने उनको कोई फायदा नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि देखिए फायदामंद तो ये चीज थी कि हिदायत ले लेते गुमराही छोड़ देते, पर उन्होंने क्या प्रेफर किया, हिदायत को छोड़ के गुमराही को लेना प्रेफर कर लिया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप भी तो दिन रात में तिजारत कर रहे हैं, तिजारत सिर्फ पैसों से नहीं होती, वक्त से भी होती है, जिंदगी से भी होती है, जवानी से भी होती है, सलाहियतों से भी होती है, आप कहीं ना कहीं तो लगा रहे होंगे ना, वक्त भी कहीं देते होंगे, उससे आप खरीद क्या रहे हैं? ये याद रखें, वक्त जो है ना वो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, पैसा कभी वापस मिल सकता है, आज आज कहीं नुकसान भी हो गया ना, चलो कल को कहीं से फायदा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो वक्त है वो कभी भी वापस नहीं आएगा, कभी मिल नहीं सकता दोबारा, यानी आज का दिन, ये घंटा, ये मिनट कभी आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आना, ये डेट दोबारा नहीं आएगी। तो आप बताइए कि जब आप तिजारत करते हैं सारा दिन, तो अपने वक्त से क्या खरीद रहे हैं आप? फजूलियात, पेबल्स, पत्थर, जिनका आखरत के बाजार में कुछ भी मोल नहीं लगेगा, या कीमती हीरे जो वहां जाके आपको फायदा देंगे, क्या खरीदते हैं? दे तो हम सब रहे हैं, ऑल द टाइम हम तिजारत कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को कहीं लगा रहे हैं, अपने वक्त को कहीं लगा रहे हैं, मगर उससे खरीद क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बैग में हमने दुनिया जहान के गंद मंद की चीजें डाली नहीं, और वो ही नहीं डाली जो कि वहां फायदा दे हमें आखरत में, क्योंकि ऑल द टाइम हम अपनी कीमती तरीन चीज देते तो जा रहे हैं, मगर हासिल क्या हो रहा है हमें इससे? और हर वक्त हमारे पास हमारा सरमाया नहीं रहेगा, ऐसा नहीं अनलिमिटेड सरमाया नहीं लेकर आए हम कि ऑल द टाइम हम अपना वक्त देते जाएं और कुछ खरीदते जाएं, चलो आज बेकार चीजें खरीद ली कल को नफामंद खरीद ली, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी ये इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारा सरमाया है, एक दिन खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले इससे वो चीज खरीदे जो नफामंद तिजारत हो। अल्लाह ताला ने सूरह सफ में बताया ना कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन सी तिजारत है जब तुंजी को, जो तुम्हें निजात देगी दर्दनाक अजाब से, हल अदुल्लुकुम, क्या बताएं तुम्हें? तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ तिजारत कैसे करें कि हमें फायदा हो, देख लें कुरान आपको इन्वेस्ट करना भी बताता है, आप जाते हैं किताबें पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट की कि कहाँ से ज्यादा फायदा हो, कुरान बताता है, आओ तिजारत भी करनी है तो कुरान से सीखो। तो ये फायदेमंद तिजारत नहीं, दुनिया में कोई भी ताजिर नहीं चाहता कि वो नुकसान वाली तिजारत करे, हर कोई चाहता है कि ऐसी तिजारत करूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, कहां से प्रॉफिट ज्यादा बनेगा वो ये देखता है। वो अगर चार चीजें हैं जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकता है तो देखता है कौन सी जगह से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, थोड़े प्रॉफिट पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हम जब अपने वक्त से इन्वेस्ट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें भी तो फायदा ही है ना, वो ज्यादा लेने की क्या जरूरत है। तो अकलमंद ताजिर बने, वह मा कानू मुहतदीन, और नहीं थे वो हिदायत पाने वाले। ये लोग कभी हिदायत नहीं पा सकते, ऐसे लोग जो ये सिफात रखते हैं, जिनकी ये हाल हो कि वो हिदायत दे के और गुमराही ले रहे हैं, वो कैसे हिदायत पाएंगे। आप देखें ना, आप ने कहीं जाना है, वो जिधर आपकी मंजिल है वो राइट साइड पे है, राइट पे टर्न लेने से आएगी, आपने ले लिया अगर लेफ्ट टर्न, सारी जिंदगी पे चलते रहेंगे आप उस जगह नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने टर्न ही गलत ले लिया। अब इन्होंने जब गुमराही खरीद ली हिदायत के बदले, हिदायत को छोड़ के, तो फिर बताएं कभी ये हिदायत पाने वाले कैसे होंगे। अल्लाह हू अकबर।